वही अरमान को दुर्जन सिंह का आस्था से इस तरह बात करना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। उसकी आंखों का रंग बदलने लगा और वो दुर्जन सिंह को घूरने लगा। अब आगे दुर्जन सिंह की नज़र जैसे ही अरमान पर पड़ी, उसे अपना दिल जोरों से धड़कता हुआ महसूस हुआ। आज पहली बार दुर्जन सिंह के दिल में डर पैदा हुआ था। वो थोड़ा हड़बड़ा कर बोला, ओ महेश, इस तांगे को उल्टा घुमा ले और शारदा महल के अंदर ले जा, और वापस यहां आने की कोशिश मत करना। क्यों उन शहरी लोगों की जान खतरे में डालना चाहते हो तुम लोग? दुर्जन सिंह के कहने पर महेश ने तुरंत उसकी बात मानते हुए तांगा घुमा लिया, लेकिन तभी आकाश और सुमित रुक गए और अहंकारी स्वर में बोले, अब जब हम यहां तक आ गए हैं तो अब हम उस पेड़ को देखकर ही जाएंगे। मिस्टर, क्या नाम बताया आपने? दुर्जन सिंह जी। और आप आस्था भाभी के क्या हुए? चाचा जी। तो आप हमारे भी चाचा हुए? तो चाचा जी, हम तो आज उस पेड़ को देखकर ही जाएंगे, और अगर तांगे में नहीं जाएंगे तो पैदल जाएंगे। ये कहकर आकाश, सुमित, अरमान, राधिका, रौनक, आहान, ध्रुव, एंजल, अविनाश और रश्मि सबके सब नीचे उतर गए। वंशिका और आस्था ही तांगे में बैठे हुए थे। तब ध्रुव ने वंशिका का हाथ पकड़कर उसे नीचे उतारा। अरमान ने झुककर आस्था का हाथ पकड़ा और उसे नीचे उतारा। तब आस्था ने अरमान का हाथ पकड़कर घबरा कर कहा, हमारी बात मान लीजिए अरमान जी, आप अपनी जान खतरे में मत डालिए ना, प्लीज। अरमान ने प्यार भरी आवाज में कहा, क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? आस्था ने कहा, खुद से भी ज्यादा। मुस्कुराते हुए अरमान ने कहा, तो बस फिक्र किसी बात की नहीं, चलो मेरे साथ। आकाश और सुमित आगे बढ़कर जिन लड़कों ने दरवाजा रोका था उन्हें हटा दिया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। दुर्जन सिंह का चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। इस वक्त उसे उन सब पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका दिल कर रहा था कि अपनी लाइसेंस वाली बंदूक से उन सबका भेजा उड़ा दे, लेकिन फिलहाल उसने अपने इमोशंस पर कंट्रोल किया और पैर पटकते हुए वहां से चला गया। जाने से पहले उसने वहां अपने एक आदमी को इशारा करना नहीं भूला। उसका एक आदमी चुपके से उन सबके पीछे जाने लगा। दूसरी ओर नानी घर पर अकेली थी। दादोजी आराम करने के लिए अपने कमरे में चले गए थे क्योंकि उन्हें बहुत नींद आ रही थी। वे बहुत सुबह उठे थे। नानी ने अपना एक पुराना संदूक खोलकर बैठी हुई थी और आस्था के छोटे छोटे सामान, छोटी छोटी चीजें देख रही थी। कहीं ना कहीं नानी सोच रही थी, अभी केवल 15 दिन के लिए ही आस्था यहाँ है, उसके बाद तो वो शहर में चली जाएगी और उन्हें अकेले ही इस घर में रहना होगा। नानी आस्था की छोटी छोटी चीजें देखकर थोड़ा थोड़ा इमोशनल हो रही थी। दुर्जन सिंह दनादन अपने घर पर आ गया था। तभी उसके दिमाग की बत्ती चली कि सब शहरी लोग इस वक्त पिशाच वाले पेड़ देखने के लिए गए हैं, तो क्यों ना वो इस बात का फायदा उठाकर नानी माँ का खून कर दे और उस खून का इल्ज़ाम उन लोगों पर डाल दे कि उन्होंने पिशाच वाले पेड़ को देखने की गलती की है, इसीलिए पिशाच ने नानी माँ का खून कर दिया। दुर्जन सिंह का दिमाग जोरों से चल रहा था। बिना देरी किए वो सबकी नज़रों से छुपते छुपाते नानी माँ के ठीक सामने आ गया। नानी जैसे ही दुर्जन सिंह को देखकर चौंक गई और उसे घूरते हुए झिड़की देते हुए बोली, तू अभी और इसी वक्त यहाँ से निकल जा, इससे पहले कि मेरा दामाद तुझे देख ले। दूसरी ओर अरमान ने शेफ को वापस घर भेज दिया था कि वो घर जाकर कुछ खाना रेडी करे, क्योंकि घूमने के बाद उन्हें शायद भूख लगे, तो शाम का स्नैक्स वो रेडी रखे। और वैसे भी आस्था का टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ खाना जरूरी था, इसीलिए रश्मि ने अपने इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग कुछ शेफ को घर वापस भेज दिया था। हालांकि वो चाहती थी कि शेफ भी गाँव घूमे, लेकिन उसने सोचा कि इस वक्त अगर शेफ भी साथ में घूमेंगे तो खाना फिर कैसे बनेगा। और फिर आस्था का कुछ ना कुछ खाना जरूरी था, और गाँव तो वो बाद में ध्रुव, आहान को बोलकर उन्हें घुमा सकती थी। ये सोचते हुए रश्मि ने 2 शेफ वापस भेज दिए थे। लेकिन जैसे ही शेफ घर आए और उन्होंने दादाजी की आवाज़ सुनी, वो दौड़कर वहां गए। तब दादाजी ने उन शेफ को देखकर हड़बड़ा कर कहा, जाओ जाकर बच्चों को बुलाकर लेकर आओ। तब एक शेफ वहीं घर पर रुका, दूसरा शेफ वापस उस जगह जाने लगा जहां पर इस वक्त सबके सब पिशाच वाले पेड़ देखने के लिए गए हुए थे। दादाजी की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगी थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो शारदा जी को बचाएं तो बचाएं कैसे, क्योंकि उनके सर से काफी ज्यादा खून बह रहा था। दूसरी ओर जल्दी ही वो सब लोग उस पेड़ की तरफ बढ़ने लगे, और जैसे ही वो उस पेड़ के करीब पहुंचे तभी उन्हें पीछे से किसी की जोरदार चीख सुनी। वो चीख किसी और की नहीं बल्कि उसी शेफ की थी जिसे दादाजी ने उन लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए भेजा था। जैसे ही वो शेफ वहां आया, रश्मि ने उसे हैरानी से पूछा, आप यहां वापस क्यों आ गए हैं, क्या हुआ है? वो शेफ घबराते हुए बोला, दादाजी आप लोगों को घर बुला रहे हैं, नानी माँ को खून निकल रहा है। उसने केवल इतना ही बताया था। आस्था की आंखें हैरानी से फैल गई थीं। अरमान, ध्रुव, आहान, आकाश, रोहित, अविनाश, एंजल सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और सभी दौड़कर बिना पिशाच वाला पेड़ देखे वहां से जाने लगे। वो आदमी जिसे दुर्जन सिंह ने उन लोगों के पीछे लगाया था मुस्कुराने लगा। जल्दी ही फोन करके उसने ये इन्फॉर्मेशन दुर्जन सिंह को दे दी कि वो लोग पिशाच वाले पेड़ तक नहीं पहुंच पाए। दुर्जन सिंह मुस्कुराने लगा कि चलो एक काम तो अच्छा हुआ। अब दुर्जन सिंह चाहता था कि जल्दी ही नानी माँ की मौत की खबर मिले और ये बात पूरे गाँव में फैल जाए कि इन शहरी लोगों ने गाँव का रूल तोड़ा है, पिशाच वाले पेड़ की तरफ गए हैं, इसीलिए नानी माँ पर हमला हुआ है। जैसे ही वो लोग वहां पहुंचे और नानी माँ को खून से लथपथ हालत में देखा, आस्था जोरों से चीख मारकर बेहोश हो गई। अरमान ने उसे अपनी मजबूत बाहों में थाम लिया और ध्रुव की ओर इशारा किया। ध्रुव और रश्मि दोनों ही नानी माँ के पास जाने लगे क्योंकि वो खुद बड़े डॉक्टर थे। वंशिका हैरानी से ध्रुव को देख रही थी। जिस तरह से ध्रुव नानी माँ को ट्रीटमेंट दे रहा था, साथ ही साथ रश्मि जिस तरह से ध्रुव का साथ दे रही थी, वंशिका को हैरानी हुई। वंशिका खुद मेडिकल की स्टूडेंट थी और फर्स्ट एड देना वो भी जानती थी, लेकिन जिस साफ तरीके से ध्रुव और रश्मि काम कर रहे थे, वंशिका को उनकी पहचान को लेकर कुछ हैरानी हुई। उसने रौनक से इशारों में पूछ लिया था कि क्या ये दोनों डॉक्टर हैं। मुझे लगता है कि हमें नानी माँ को किसी बड़े अस्पताल में लेकर जाना चाहिए, लेकिन तभी रौनक बोली, उसकी कोई जरूरत नहीं है, रश्मि दीदी है ना, ये बहुत बड़ी डॉक्टर हैं, बहुत बड़े अस्पताल में काम करती हैं, और ये ध्रुव, इन्हें कौन नहीं जानता, ये तो द ग्रेट फेमस सर्जन है, ध्रुव मल्होत्रा। रौनक के कम शब्दों में ध्रुव का इंट्रोडक्शन देने पर वंशिका की आंखें हैरानी से फैल गई थीं। ध्रुव के बारे में वो अच्छी तरह से जानती थी। मेडिकल लाइन में जो कोई भी था वो ध्रुव का नाम अच्छी तरह से जानता था, ध्रुव की मिसाल देकर उन्हें पढ़ाया जाता था। लेकिन आज ध्रुव को अपने सामने देखने के बाद वंशिका को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही ध्रुव हो सकता है जिससे मिलने में लोगों को महीना लग जाते हैं। जल्दी ही ध्रुव और रश्मि ने नानी माँ को अच्छी तरह से ट्रीटमेंट दे दिया था, लेकिन इस वक्त नानी माँ पूरी तरह से बेहोश थी। राधिका और रौनक आस्था को पूरी तरह से संभालने की कोशिश कर रही थी। हालांकि अरमान ने उसे होल्ड करके रखा हुआ था, लेकिन वो इस तरह से आस्था को अकेला नहीं छोड़ सकते थे, तो इसीलिए अरमान ने आस्था को एक तरफ बिठाया था। राधिका और रौनक आस्था के हाथ पैर मसलने लगी थी। तभी रश्मि वहां आई और बोली, आस्था को क्या हुआ है, अचानक से ये फेंट क्यों हो गई। अरमान ने रश्मि को बताया कि नानी माँ की हालत देखकर आस्था फेंट हो गई। तब जल्दी ही रश्मि ने आस्था को भी एक इंजेक्शन दे दिया।